आज जिन दो रचनाकारों पर हम बातचीत कर रहे हैं उनमें से पहले हैं पद्माकर, जो रीतिकालीन कविता में प्रमुख स्थान रखते हैं, और दूसरी महादेवी वर्मा हैं, जो आधुनिक काल में शामिल की जाती हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि कविताओं का जो प्रश्नों का विभाजन है कविताओं के लिए, वह कुल 21 अंकों का होता है। इसमें कविता की व्याख्या 4 अंक, काव्य सौंदर्य 2 अंक, बोध प्रश्न 4 अंक, केंद्रीय भाव 2 अंक, कविता की विकास यात्रा 2 अंक, काव्य शास्त्र 2 अंक और अपठित काव्यांश 5 अंक। तो मैंने इसलिए यह बताया कि क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और प्रश्न पत्र के अनुसार ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पद्माकर को लेते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताओं को पहले समझ लेते हैं, फिर कविता की विशेषताओं को समझेंगे। विद्यार्थियों, पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका जन्म संवत 1810 में बांदा जिले में हुआ था और अपनी प्रतिभा के कारण उन्होंने राज दरबारों में बहुत प्रतिष्ठा पाई थी। कई राजाओं के साथ वे रहे, जैसे बांदा के हिम्मत बहादुर सिंह के साथ या फिर ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के साथ। तो कई राजाश्रयों में वे रहे और उन्होंने सुंदर रचनाओं की सृष्टि की। प्रमुख रचनाएं उनकी माने तो हिम्मत बहादुर वीरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी है। और ऐसा भी माना जाता है कि जीवन के अंत समय में उन्हें कुछ रोग हो गया था और वे गंगा तट पर रहने लगे थे और उसी समय उन्होंने गंगा की स्तुति में गंगा लहरी को लिखा था। जैसा कि हमने पहले के कार्यक्रमों में चर्चा की थी कि रीतिकाल कई मायनों में विशिष्ट है और उन विशेषताओं को हम पद्माकर में भी देखेंगे। जैसे रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है और यहाँ दो कविताएं आपको दी गई हैं, उसमें भी आप इसका एहसास करेंगे। दूसरा है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को भी अलग रूप में व्याख्यायित किया है, उनमें सहृदयता है, संवेदनशीलता है, चित्रात्मकता है, ये उनकी शैलीगत विशेषताएं हैं। तो इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो पद्माकर के काव्य की जो भावात्मक विशेषताएं हैं और कलात्मक विशेषताएं हैं, उन दोनों का आप वर्णन कर सकेंगे, उनके प्रश्नों को हल कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण हुआ है, लेकिन प्रकृति यहाँ अलग रूप में है। तो पहला जो आपको कविता जो दी गई है वह है वसंत, इसके बारे में पहले मूल पाठ को हम पढ़ लेते हैं और फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। मूल पाठ है, और भाति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और डोर झौरन पे बौरन के वह गए, कहे पद्माकर सु औरे भाति गलियान, चलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए, औरे भाति विहग समाज में आवाज होती, कैसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे वन वह गए। अब आप देखें, एक तो आपको एक नादात्मक सौंदर्य दिखाई देता होगा क्योंकि कविता की रचना इस तरह की है। यहाँ पे वसंत के कारण जो प्रकृति का सौंदर्य है, उस सौंदर्य की एक अद्भुत छटा आपको दिखाई देगी। वसंत के आने के कारण उल्लासमय वातावरण का यहाँ पे चित्रण है। यहाँ आप देखें कि कवि कहते हैं कि वसंत का आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर और भीतर मादकता भर देता है। मादकता का अर्थ है आनंद की सृष्टि करता है। और आप ये भी देखेंगे कि ध्वनियों के माध्यम से किस तरह से एक मनमोहक चित्र यहाँ प्रकृति का प्रस्तुत किया गया है। कभी कहता है कि वसंत को आए अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन कुंजों में भौरों की भीड़ गूंजने लगी है। अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि भौरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ ऐसा लगता है कि वसंत का उत्सव मना रहा है और सभी भौरे मिलकर गुंजायमान हो रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि डाल डाल पे भौरों के जो गुच्छे दिखाई देने लगे हैं उनका रूप स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि वसंत ऋतु में जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, उनमें फूल आने लगते हैं और हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है और उसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ कहते हैं। वे कहते हैं कि गली गलियारों में बने ठने युवक युवतियां भी वसंत के सौंदर्य से उत्पन्न काम भाव से पीड़ित परंतु हर्षित दिखाई देते हैं। अर्थात सभी प्रेम में निमग्न है और वे कहते हैं कि ऐसे मोहक ऋतुराज वसंत को आए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन पक्षियों की चहचहाट चारों ओर सुनाई दे रही है और सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम से बदल गया है और वन उपवन हर जगह हरियाली छा गई है। और कवि को ये लगता है कि सौंदर्य की इतनी अधिकता है कि उसे शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वसंत का जो उल्लास है उसका सौंदर्य यहाँ दिखाया गया है और सौंदर्य का जब वर्णन किया जाता है शिक्षार्थियों तो रूप के आधार पर किया जाता है, अर्थात आंखों से जो आप देखते हैं चारों तरफ सौंदर्य। रस का वर्णन किया जाता है, आपके अंदर जो आनंद का तत्व आता है गंध के अनुसार, अर्थात सुगंध के अनुसार सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। और मादकता अर्थात मन को आह्लादित करने वाली जो स्थिति होती है उसके आधार पर प्रकृति का चित्रण किया गया है। यहाँ आप देखें कि जो शिल्प सौंदर्य है वह बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि ध्वनियों का ऐसा विधान किया गया है कि उससे एक सौंदर्य की सृष्टि होती है। खासतौर से अलंकारों का अगर हम देखें तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जैसे भीर भौर, या आप देखें छलिया छबीले छैल तन मन, इस तरह का सौंदर्य आपको कई जगह दिखाई देगा। एक और विशेषता आपको जाननी चाहिए इन पंक्तियों में कि उन्होंने लाक्षणिक तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे औरें भांति। अब यहाँ पे और का जो प्रयोग किया गया है वो सामान्य प्रयोग नहीं है, विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग है। और भांति का मतलब है कि कुछ और ही, या सौंदर्य कुछ और ही है जिसका शायद वर्णन न किया जा सके। तो इस तरह से आपने इस कविता में प्रकृति के चित्रण का जो रूप देखा वह अकल्पनीय है, वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि अकथनीय है। दूसरी कविता आपको देख लेते हैं। दूसरी कविता का नाम है भाग। आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक त्योहार हैं, लेकिन होली का अपना एक अलग महत्व है और उस होली के बारे में कवि किस तरह से अपना वर्णन करता है वह देखने लायक है। तो मूल पाठ को देखते हैं। एकै संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, दृगनी गए जो भरी आनंद मढ़े नहीं, धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सौह, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, कैसी करूं कहां जाऊं कासे कहूं कौन सुने, कू तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन तय, कड़िगो अबीर पै अहीर तो कढ़े नहीं। वो आप यहाँ पे देखें, आपको चूंकि ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है तो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए शब्दार्थ भी आपको साथ साथ दिया गया है और आप उन शब्दार्थ को जरूर देखें क्योंकि कई कठिन शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अर्थ को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ होली का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन है और एक गोपिका कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का जो क्रम करती है उसका यहाँ सजीव वर्णन है और वह अपनी सखी से क्या बात करती है वह देखने लायक है। पूरा कवित्व आप कहें तो एक गोपिका के कथन के रूप में है, उसकी परेशानी यहाँ पे दिखाई देती है। इसे समझने के लिए आप होली का त्योहार याद कीजिए, जबकि हवा में अबीर और गुलाब को उड़ाया जाता है, यह उड़ता गुलाल गोपिका की आंख में भी चला जाता है और दूसरी ओर उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं, नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण। सोचिए कि किस तरह की समस्या है, अगर केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने के लिए हम कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी आंखों में बस गए हैं, उसका गोपी क्या करे। इसीलिए वो कहती है कि मैं किससे कहूं और क्या कहूं, मेरी कहानी तो अद्भुत है और अविश्वसनीय भी लगती है। नंदलाल के आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वह अपने भाव को समझा नहीं पा रही है। वो कह रही है कि अबीर तो जैसे तैसे निकल गया पर अहीर नहीं, अहीर अर्थात श्री कृष्ण। और पूरी कविता में देखिए एक व्यंजना है, यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति के साथ वर्णित किया गया है, पर यहाँ तुलना करते करते भी रचनाकार ये कहना चाहते हैं कि अबीर तो निकल जाएगा लेकिन प्रेम को आंखों से नहीं निकाला जा सकता, उसे पानी से धोया नहीं जा सकता। इसीलिए सहेली सौगंध भी खाती है, कसम भी खाती है और दूसरी सहेली को आश्वासन भी देती है कि वह श्री कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और उसके पास कोई इलाज भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक त्योहार के माध्यम से प्रेम का वर्णन कैसे रचनाकार करते हैं। तो इस तरह से अगर इसके भाव और शिल्प पक्ष पर बात करें तो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि रीतिकाल कवियों में प्रेम और सौंदर्य मुख्य रूप से उभर कर आता है, तो यहाँ भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति आपको दिखाई दे रही है। गोपिका के प्रेम में श्रृंगार का उत्कर्ष है, एक विशुद्ध रूप है और एक कल्पना की उड़ान भी है। दूसरी ओर अगर हम शिल्प पक्ष की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार की छटा आपको दिखाई दे रही है और दृश्य विधान आपको लगेगा कि सामने भाग खेला जा रहा है और यह भी लगेगा कि जो शब्द योजना है उसमें एक अलग तरह का ताना बाना है। प्रकृति का जो ऋतु वर्णन है वह भी कल्पना से भरा हुआ है और आनंद और उल्लास का जो वर्णन प्रकृति चित्रण में किया है वह वास्तव में गौरतलब है, काबिले तारीफ है। तो इस तरह से पद्माकर ने जो जिस तरह से अपने यहाँ पे प्रतिभा का प्रदर्शन किया है इसीलिए उनको प्रतिभा संपन्न रचनाकार माना जाता है। उनमें अलंकार का सौंदर्य, उनमें भाव पक्ष का जो उत्कर्ष है, भाव प्रवणता है, वह अन्य कवियों से उन्हें अलग करती है। दृश्य विधान जो है उसे इस रचनाकार की श्रेष्ठता साबित होती है। तो इस तरह से इस पाठ को आप कई बार पढ़ें और इसमें मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। कि इसमें जो प्रश्न आएंगे बोध प्रश्न, वह तो सीधा सीधा आपसे पूछे जाएंगे कि पाग में गोपिका अपनी किस विवशता का वर्णन करती है, तो आप बताएंगे कि उसकी आंखों में श्री कृष्ण बस गए हैं और वह उन्हें नहीं निकाल पा रही है, या उसकी विवशता है उसका यहाँ पे वर्णन है। अगर भाषा की बात की जाएगी कि पद्माकर की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको उनके दृश्य विधान, उनकी ब्रज भाषा, उनके अनुप्रास, इन सब का वर्णन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा और हम कोशिश करेंगे कि आप इसको बाद में भी जाकर पढ़ें और इस कविता को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बताया कि ब्रज भाषा में है, इसलिए शायद आपको दो तीन बार पढ़ना पड़े। तो हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी कविता पे चर्चा करेंगे।
बिल्कुल शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आप बने रहिए और सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़। लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
बच्चे, बूढ़े या जवान,
शिक्षा का अवसर एक समान।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान,
लॉग ऑन करें www.nius.ac.in
और प्राप्त करें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के सभी विषयों की जानकारी।
शिक्षार्थियों, श्रोताओं, पुनः स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी यानी कि उच्चतर माध्यमिक लेवल पर, और हमारा विषय है हिंदी, और जिसमें अभी हमने बात की पद्माकर के बारे में, अब बात करेंगे हम महादेवी जी के बारे में और जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में अपने एक्सपर्ट के साथ। आपको बता दें कि हमारे संग लाइन पे बने हुए हैं डॉक्टर वी के राय जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है एकेडमिक डिपार्टमेंट एनआईएस। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तो सर, जैसा कि हमने अभी बात की थी पद्माकर जी के बारे में, अब हम बात करेंगे महादेवी जी के बारे में, तो मैं चाहूंगी सर चर्चा को प्लीज शुरू कीजिए।
जी, तो शिक्षार्थियों, आज दूसरा पाठ हम महादेवी वर्मा पर चर्चा करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। शिक्षार्थियों, छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन चार रचनाकारों ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी, भाषा के स्तर पर और भाव व्यंजना के स्तर पर। जब आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो यह जो कालखंड था 1918 से 38 तक का, इसमें रचनाकारों ने साहित्य में कल्पनाशीलता को, भाव प्रवणता को, और हम कहें कि आत्मानुभूति को बहुत ही व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। आज जो कविता हम पढ़ रहे हैं, मैं नीर भरी दुखी बदली, यह आत्माभिव्यंजना की कविता है। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रतिष्ठित रचनाकारों में इनकी गिनती की जाती है और इन्होंने कविता और गद्य दोनों पर समान अधिकार से लिखा। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी और इलाहाबाद ही उनकी कर्मभूमि रही। वे महिला विद्यापीठ की कुलपति रही और उन्होंने उस संस्था को शिखर तक पहुंचाया। काव्य सृजन की जहां तक बात है, उसमें वे बचपन से ही संलग्न थी और अनेक प्रसिद्ध काव्य कृतियां उनकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत और दीप शिखा। और जहां तक मैंने बताया कि गद्य पर भी समान अधिकार है उनका, तो उनके प्रसिद्ध संस्मरण हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी। और भारतीय ज्ञानपीठ से, भारत भारती पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आप उनकी कविता को देखें तो उसकी गहराई आपको पता लगेगी, उसमें किस तरह का भाषा का सौंदर्य है। ये जो कविता है वैसे तो खड़ी बोली में है, लेकिन इसकी भाषा बड़ी ही प्रांजल है और कहीं कहीं आपको जटिल भी लगेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह कविता दो समानांतर अर्थ को लेकर चलती है, इसलिए आप शुरू से ही इस कविता को समझने की कोशिश करें। आप जैसा शीर्षक से देख रहे हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये मैं कौन है। यहाँ पहले तो बदली अपना परिचय दे रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वह नीर भरी है क्योंकि वह जल बरसाती है। तो यहाँ एक अर्थ तो ठीक है बदली के अर्थ में, लेकिन दूसरा अर्थ भी कवित्री के संदर्भ में यह कविता देखी जाती है और उसको हम विस्तार से देखेंगे अर्थ, जब हम देखेंगे कि कैसे दोनों अर्थ समानांतर चल रहे हैं। तो सबसे पहले पांच पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर उसको अर्थ को समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। अब यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक और यहाँ वर्षा जल से जो भरी हुई बदली है उसका परिचय मिल रहा है, और दूसरी ओर कवित्री अपने वेदनापूर्ण जीवन की ओर संकेत कर रही हैं। तो बदली के पक्ष में पहले अर्थ को देख लेते हैं और फिर कवित्री के अर्थ में। बदली के पक्ष में इसका अर्थ यह है कि उसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे भी स्थिरता है। अर्थात ऊपर से तो दिखाई देता है कि गर्जना है, लेकिन अंदर स्थिरता है। मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं होता, वह निष्पंद रहता है, अर्थात उसमें कोई हलचल नहीं होती है, जबकि उस गर्जना पर विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से आहत है, दुखी है, इसलिए बादलों की हलचल और गर्जन उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में जो बसी हुई विद्युत की कौंध है उसको यहाँ रचनाकार ने दीपक सा बताया है, और उनमें स्थित जल नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है। अब आपने एक पूरा चित्र देखा कि जब वो बिजली कड़कती है तो किस तरह से उजाला हो जाता है, किस तरह से बारिश शुरू होती है, उसका एक पूरा बिंब यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन अगर नाइक विरहिणी के रूप में देखें कवित्री के संदर्भ में, तो उसका अर्थ यह होगा कि उसके स्पंदन में वह चिर निस्पंदन बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है, बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है यहाँ पे। यहाँ ऐसा लगता है कि यह गर्जन किसी की पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन नहीं है। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि जो भी विरह से पीड़ित स्त्री है उसका क्रंदन है ये। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि विरहिणी के आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये जो दीपक है विरहाग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर रहते हैं। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है। इस प्रकार जैसे बदली जलबूंदों को, तो यहाँ आप देखें कि कवित्री स्पष्ट करना चाहती हैं कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है उसी प्रकार मेरी आंखों में भी आंसू रहते हैं। अब दूसरा अंश देख लेते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नवके नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बहार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धोमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अब जो जल से भरी हुई बदली है वह अपनी स्थिति का वर्णन यहाँ करती है। वह कहती है कि मेरे तो कदम कदम पर संगीत है, अर्थात बादलों का गर्जन, उसके आने की प्रसन्नता का, या जो मानव जगत है और पशु जगत है उसकी हलचल से यह पता लगता है कि उसके हर पग में संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें हैं जिनसे पराग झरता है। उसे कवित्री यहाँ पे स्वप्न पराग कहती हैं, क्योंकि बादलों के साथ लोगों के स्वप्न भी जुड़े होते हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। और फिर आगे कहती हैं कि नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। यहाँ है कि देखिए चित्र खड़ा किया जा रहा है। बादलों की छाया में मलय बहार, शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। वे बताती हैं कि जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है और उसी को मलय बयार कहती हैं। उनका कहना है कि प्रीतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंध हवा के समान प्रतीत होती है। तो देखिए कि प्रकृति के साथ किस तरह से मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया गया है यहाँ पे, और मूर्त की तुलना अमूर्त से की है। जैसे तो कहती हैं कि धुएं जैसे बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो मानो क्षितिज की भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो। यहाँ देखिए मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता के भार से की गई है। इस तरह की अभिव्यक्तियां आपको शायद अन्य जगहों पर नहीं मिलेंगी। फिर आगे इसको देखते हैं कि ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो परिणाम क्या होता है। चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट आते हैं। जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े हुए हैं वह अंकुरित होने लगते हैं। उस अंकुरण को नवजीवन के रूप में यहाँ पे माना गया है। और इसीलिए बदली कहती है कि वही रजकण से नव जीवन अंकुर बनकर निकल पड़ती है। तो यहाँ आप देखें कि बादलों के घुमड़ने, बरसने और अंकुरण का कारण बनने की प्रक्रिया और जो प्राकृतिक क्रियाकलाप होते हैं उसका सौंदर्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। और यह तो बादलों के संदर्भ में अर्थ हो गया। दूसरा विरहिणी के संदर्भ में अगर अर्थ देखें तो उसका अर्थ होगा कि विरहिणी के पदचापों में संगीत है और उसकी सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं की सूचक हैं, इच्छाओं की सूचक हैं, और उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी आभा है और वह जहां निकल जाती है वहां सुगंध बिखेरती है। उसकी भावों पर चिंता का भार है क्योंकि प्रिय से मिलन होगा या नहीं या दुविधा उसके मन में है। और जब वह पीड़ा को सह नहीं पाती तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं और वह उसे लगता है कि मानो यह संसार अपनी संसार को अपनी वेदना वितरण कर रही है और उसे नया जीवन दे रही है। अर्थात यहाँ कवित्री की जो वेदना है शिक्षार्थियों वह लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, सीधे सीधे नहीं। आप देखिए कि प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से कवित्री यहाँ अपनी वेदना को प्रस्तुत करती हैं। तीसरा जो अंश है वह देख लेते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटाज चली। अब यहाँ पे आप देखिए कि बादलों के घुमड़ने के बाद बारिश होने पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी कल्पना की गई है। बदली कहती है कि न तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है, न चले जाने से कोई पद चिन्ह शेष रह जाते हैं उस पर, न तो बादलों के बरसने से जो पृथ्वी हमारी है वह और साफ सुथरी हो जाती है और आकाश भी साफ हो जाता है। तो यहाँ वो कहना चाहती है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, उसकी छाप क्या है, क्योंकि वह तो अपने सुख को विस्तारित कर देती है, प्रस्फुटित कर देती है नव जीवन के रूप में। खेतों और खलिहानों में जो हरियाली हम देखते हैं वही वास्तव में उसका स्वरूप है, क्योंकि बादल तो रह नहीं जाते, बादल चले जाते हैं। इसीलिए बादल का कहना है कि विशाल आकाश में उसका कोई घर नहीं है और उसका कोई कोना अपना नहीं है। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि मेरे भाग्य में कोई सुख नहीं है और मेरा कोई अपना नहीं है, यह जानते हुए भी जो बदली है वह घिरती रहती है, घुमरती रहती है, बरसती रहती है और नया जीवन देती रहती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी और आज अपना जल बरसाकर चली गई, उसकी स्मृतियां शेष रह जाती हैं और उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिहरन का अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए कि प्रकृति का जो बादलों का परोपकारी रूप है उसका चित्रण है, लेकिन दूसरे अर्थ में विरहिणी के रूप में इसका अगर अर्थ हम समझें तो यहाँ पे कवित्री मानो कह रही है कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता, हाँ केवल स्मृतियां रह जाती हैं और लोग उसकी वेदना को याद करते हैं और पुलकित होते हैं अर्थात खुश होते हैं। तो इतने विस्तृत संसार में किसी कोने को अपना न होना कितना कष्ट का विषय है, लेकिन वो कहती हैं कि यही हमारी नियति है और उमड़ना और मिट जाना जैसे यही उनके भाग्य का खेल है। अब यहाँ देखिए आपकी कितने बेहतर तरीके से मानव जीवन का बदली के साथ एक तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है और महादेवी ने अपनी विरह वेदना को सीधे सीधे नहीं कहा है, बल्कि प्रकृति के माध्यम से प्रकृति का आलंबन लेकर अपनी वेदना को प्रस्तुत किया है। यहाँ माँ देवी की करुणा भी नजर आती है और उनकी जो एक समाज को देने की प्रवृत्ति है, समाज को सब कुछ समर्पित करने की प्रवृत्ति है, वह भी यहाँ पे दिखाई देती है। कहीं कहीं पे आपको निराशावादी दृष्टिकोण दिखाई देगा और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर भी दिखाई देगा। और इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की जो असली स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसका चित्रण किया है। देखिए, हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, वह क्षणिक है, चिरस्थायी नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा और यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसीलिए वे कहती हैं कि मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है कि वह आज है लेकिन कल नहीं होगा। और बड़े सलीके से शुद्ध खड़ी बोली में और गीतात्मक शैली में उन्होंने जीवन के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर अलंकारों की दृष्टि से देखें शिक्षार्थियों, तो यहाँ पे उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों की सृष्टि दिखाई देगी और संपूर्ण गीत में आपको मानवीकरण दिखाई देगा। बादल के जो जितने भी क्रियाकलाप हैं वह मनुष्य के क्रियाकलाप हैं, इसीलिए इस कवि को कवित्री महादेवी को सौंदर्य का कवि भी माना जा सकता है, विरह वेदना का भी कवि है और भावों की उदात्तता इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। वियोग श्रृंगार का सुंदरतम चित्र इनकी रचनाओं में है और लक्षणा शब्द शक्ति आप देख सकते हैं। सीधे सीधे बात नहीं कहते, वे उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को रखती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें शिल्पगत बहुत सौंदर्य है। मूर्त से अमूर्त की तुलना आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया था, चिंता का भार बनी अविरल, और मानवीकरण अगर आप देखना चाहते हैं तो श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकून, इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा और भी अलंकार आपको यहाँ दिखाई देंगे, विशेषण विपर्यय वगैरह। तो मैं शिक्षार्थियों से यही कहूंगा कि आप इस कविता को बार बार पढ़ें और अर्थ को समझने की कोशिश करें। मैंने संक्षेप में इसकी विशेषताओं को आपके सामने रखा है। धन्यवाद।